ततो वै कवयो नित्यम्। बोलिए भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसादनी। शब्द के अर्थ को देख लीजिए, अतो वै निश्चित ही, अतएव निश्चय ही, जो कवि लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, आध्यात्मवादी हैं, वे नित्य, नित्य का तब समझते हैं, रोज ही हमेशा भक्तिम परमया मुदा, मुदा का मतलब होता है प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता के संग भगवान की भक्ति करते हैं। इसका वर्णन हमने पिछले अध्याय में, पिछले श्लोक में सीखा था कि जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है तो भक्ति का संपर्क प्राप्त करते उसको बहुत सुख प्राप्त होता है। तो यही बात हमें बोली जा रही है, भक्तिम परमया मुदा अतो वै, जो आध्यात्मवादी है बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, क्योंकि भक्ति का संपर्क प्राप्त करके, जैसे नाम जप करके, भागवत श्रवण करके उसको बहुत सुख मिलता है। वासुदेव भगवती, किनकी भक्ति करता है? भगवान वासुदेव की करता है। और इसमें शब्द है कुर्वंती। देखिए कुर्वंती शब्द जो है इसको परस्मै पद कहा जाता है। कुर्वंती है तो किम भक्ति में भी श्लोक आता है। कुर्वंती का अर्थ होता है कि वह भगवान को सुख देने के लिए भक्ति करते हैं, अपने को सुख देने के लिए नहीं करते, लेकिन क्योंकि भगवान को सुख देते हैं तो अपने आप ही आत्मा को सुख प्राप्त हो जाता है। ये कुर्वंती शब्द का महत्व है। वहां पर भी शब्द आपने सुना हो, आत्मा रामश्च मुनयः श्लोक वाले में वो आएगा, वैसे आगे अभी तो नहीं सुना होगा, उसमें भी कुर्वंती शब्द आता है। उसमें बोलते हैं ये परस्मै पद है। आत्मै पद मतलब कोई व्यक्ति कार्य अपने लिए कर रहा है, और परस्मै पद मतलब किसी दूसरे के लिए कर रहा है। तो जो भक्ति है वह किसके लिए की जाती है? भगवान के लिए की जाती है, भगवान को प्रसन्नता देने के लिए। लेकिन भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, ये भी समझ लेना चाहिए। आत्म प्रसादनी कह रहे हैं क्योंकि आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। ये भक्ति का स्वरूप ही ऐसा है कि आत्मा को सुख देता है, उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत हमको नहीं है। जैसे अग्नि में का स्वरूप ही है, स्वभाव ही है कि उसमें अगर हम उंगली देंगे तो वह जलाएगी, ये बात है। तो क्या हम सीख रहे हैं? अतो वय का मतलब है, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, वो कहते हैं कि तत्र च सदाचारम दर्शयन उपसंहरति अतयति। कह रहे हैं कि पूर्व के भक्तों ने क्या सदाचार किया है उसको इस श्लोक से दिखा जा रहा है। श्लोक का थीम क्या है, विषय क्या है, कि भाई लोगों ने इससे पहले क्या किया है उसके अनुसार आपको करना है। अतो वय कवयो नित्यम, जो कवि लोग हैं, जो कवि का अर्थ मतलब जो अध्यात्मवादी हैं, जो महान भक्त हैं, वह नित्य ही भगवान वासुदेव की ही भक्ति की है। अब उसमें संबंध में किसी और देवता को उपासना करने की बात नहीं आती है। नित्य मतलब किसी भी समय अगर किए तो भगवान कृष्ण की, वासुदेव की ही भक्ति की। तो सदाचार का अर्थ समझते हैं जो सत पुरुषों ने आचरण करके दिखाया है उसकी मार्ग पे हमें चलना होता है। तो जितने भी महान भक्त हुए उन्होंने वासुदेव की ही भक्ति करी, और उसको क्यों करी? क्योंकि वह बहुत सुख देने वाली होती, प्रसन्नता देने वाली होती। वो कहते हैं आत्मनः प्रसादनीम मन शोधनीम। कह रहे हैं कि आत्मा को आत्म प्रसादनीम शब्द आप जो देख रहे हो, लास्ट शब्द है, उसका अर्थ है कि मन को शोधन करने वाली है। कभी कभी भक्तों के मन में प्रश्न आ सकता है कि हृदय में जो काम है, क्रोध है, उसका शोधन कैसे हो? कैसे हो? भगवान की भक्ति करके। भक्ति का स्वरूप ही है कि अपने आप ही आपको शुद्ध कर देगी, हमको अलग से कोई शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम किसी और शुद्धिकरण की प्रक्रिया का आश्रय ले रहे हैं तो यह भक्ति के प्रति अपराध है, क्योंकि भक्ति से श्रेष्ठ शुद्ध करने की कोई प्रोसेस नहीं। समझ रहे हैं? ठीक है। अब वो कह रहे हैं वासुदेव भक्तिम कुर्वन्ति इति भजनीय विशेषो दर्शितः। भगवान वासुदेव की ही भक्ति करते हैं, इससे दिखाते हैं कि भगवान वासुदेव विशेष रूप से भजनीय हैं। भजनीय मतलब जिनका भजन किया जाना चाहिए। अर्थात अब शब्द देखिए यहां पर है कवि। जो महान पुरुष हैं, जितने भी महान पुरुष हो चुके हैं, उन्होंने भगवान वासुदेव को चुना है, तो ये दिखाता है कि भगवान की भगवान विशेष रूप से भजनीय है। क्या भजनीय शब्द समझ में आ रहा है आपको?
इसके ऊपर वो चार्जिंग में लगा सकते हैं क्या? ये थोड़ा सा चार्जिंग डाउन हो रहा है। भजनीय शब्द समझ में आता है, कमनीय मतलब जिसकी वो जो उसकी कामना की जानी चाहिए, कामना करने योग्य। तो भजनीय का अर्थ क्या हुआ? भजन करने योग्य। विशेष भजनीय क्यों है? क्योंकि जो महान आध्यात्मवादी हैं वह भी भगवान को ही स्वीकार किए हैं। जैसे आप जानते हो जब स्वयंवर हो रहा था तो लक्ष्मी जी ने शिव जी ब्रह्मा जी सभी को छोड़ करके भगवान विष्णु को भगवान कृष्ण को ही स्वीकार किया था। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये भी चार्जिंग में नहीं आया शायद, कनेक्शन नहीं किया वहां से। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, ये बात हम इस श्लोक से सीख रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बड़ा सुंदर टीका करते हैं। वो कहते हैं, ये कहना कि परम या मुदा अर्थात साधना भक्ति करने में भी कोई दुख नहीं होता है, बड़े सुख से साधना भक्ति की जाती है, क्या इसको आप लोग मानते हैं? प्रसाद खाने में क्या कठिनाई होती है? और किसी चीज में सुख नहीं आए लेकिन प्रसाद अच्छा मिल जाए तो उसमें भी कठिनाई होती है। और एक 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 कौर के संग करोड़ों जन्म मतलब यज्ञ का लाभ प्राप्त हो रहा है, कितना इंटेंस प्यूरिफिकेशन है। या कीर्तन करने में क्या दुख होता है? कोई दुख नहीं होता है। आप यहां बैठे ही तो हुए हैं, बैठ के भगवान के बारे में सुन रहे हैं, कुछ और तो करना नहीं है, मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं। तो संपादन करने की दृष्टि से भी भक्ति बहुत आसान है। अब बोला जाए अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो शीर्षासन का अभ्यास करना होगा, बात उसके लिए अभी गुफा में जाकर के रहना पड़ेगा। अभी देखिए अभी भी स्वेटर पहने हैं, उसके ऊपर हम शॉल भी लेके आए हैं, कोई कहे हिमालय में जाके रहना पड़ेगा तो बहुत कठिनाई है। तो इस प्रकार के आप देखिए साधन भक्ति संपादन करने में भी बहुत सुखी होता है। और जैसे मैंने पहले बताया था, अनर्थ निवृत्ति के बाद तो भक्ति रोज अच्छी लगती है। अभी भी आप लोग को अनुभव होगा कभी कभी जब बड़ा अच्छा होता है, अच्छा मतलब समझते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे हम भक्ति करते जा रहे हैं हम अब स्थैर्य की तरफ प्रगति कर रहे हैं। स्थैर्य मतलब समझते हैं, अब आपको रोज भक्ति करना अच्छा लगेगा, ये स्थिति आ जाएगी। इसका हम चर्चा पहले कर चुके हैं, जब जितनी मात्रा में रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है हृदय से, भक्ति करना और अच्छा लगता है। ये बातें तो आप स्पष्ट समझ रहे हो, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम पढ़ते हैं। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से, प्रभुपाद जी नित्य शब्द को समझा रहे हैं, अनंत काल, अनंत अनादि। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान कृष्ण की भक्ति कब से हो रही है। यह भी कभी कभी लोगों में धारणा होती है कि 5000 साल पहले कृष्ण आए और भगवान राम पहले आए तो कृष्ण की भक्ति कोई नहीं कर रहा। पहली बात तो वो राम और कृष्ण में भेद देखते हैं, एक अपराध है, और दूसरा सोचते हैं कृष्ण तो अभी आए, उसके पहले तो नहीं थे, और इस प्रकार की भावना करते हैं। तो यह गलत है, हमेशा हमेशा से भगवान कृष्ण की भक्ति की जा रही है, हम कोई नया कार्य नहीं कर रहे। अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है, और इसके अलावा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आत्मा को सुख दे सके, ये भी समझ लेना चाहिए। तात्पर्य यहां पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। अभी मैंने बताया था ना टीका से कि भगवान कृष्ण वासुदेव कैसे विशेष रूप से भजनीय है, वह श्लोक में रखा गया है। आचार्यों की सारी टीका को प्रभुपाद जी समावेश कर लेते हैं, हम उसको देखते हैं तो और समझ में आता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान हैं, और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप हैं। इसको मुझे समझाना पड़ेगा कि आप समझ में आ गया, ये समझ में आ गया नहीं समझ में आया? यहां पे समझाने के लिए वो चार्ट नहीं रहता है, फिर भी चलिए। गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण जो गोलोक विहारी हैं वो स्वयं रूप हैं, उनके परे कुछ भी नहीं है। पहली बात ये समझ में आना चाहिए, स्वयं रूप का अर्थ है कि उनका स्रोत अब कोई नहीं, उनके परे कोई नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, भगवान कृष्ण के पहले जो विस्तार हैं वह बलराम जी, और बलराम जी से फिर चार चतुर्व्यूह विष्णु स्वरूप होते हैं, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। अब उसके बाद फिर इनसे चार विष्णु स्वरूपों का विस्तार होता है जिसमें कि नारायण आते हैं, और फिर उन नारायण से उसमें से एक नाम आता है मूल महासंकर्षण, उनसे ही गर्भोदकशा विष्णु का विस्तार होता है, उनसे आप जानते हो, क्षमा कीजिएगा, कारणोदकाशय विष्णु का विस्तार होता है, उनसे फिर शिरोदकाशय गर्भोदकाशय विष्णु और उसके बाद शिरोदकाशय विष्णु, इस तरह से। तो ये चीज है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जितने भी ये मतलब अपने को विस्तारित करते हैं वे भगवान के अंश हैं, स्वांश हैं, उनके समान ही शक्तिशाली हैं, फिर भी उनकी सत्ता, उनका सत्ता शब्द कहा जाता है, वह भगवान के ऊपर आधारित है। भगवान मतलब भगवान कृष्ण गोलोक विहारी की बात बोली जा रही। ओके, जीवात्माएं ये अलग अलग अवतार होते हैं और इन अवतारों का वर्णन हम तीसरे अध्याय में करने का प्रयास करेंगे। पुरुषावतार आप जानते हो, कारणोदकाशय विष्णु, गर्भोदकाशय विष्णु, शिरोदकाशय विष्णु। गुणावतार कौन है? ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी। लीलावतार, भगवान के बहुत सारे लीलावतार हैं जो विभिन्न लीलाएं करते हैं, जैसे नरसिंह देव, मत्स्य इत्यादि। युगावतार, जो हर युग में आकर के युग धर्म की स्थापना करते हैं। और ऐसे अन्य भगवान के जो अवतार हैं, जैसे नारद जी, जिनको भगवान विशेष शक्ति देते हैं कुछ कार्य करने के लिए। मैंने खाली शॉर्ट में बता रहा हूं, इसको डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे तीसरे अध्याय में। अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति हैं। दिव्यता की इति है मतलब दिव्यता की परिधि है, उसके परे कोई दिव्यता है नहीं, ये बात स्थापित की जा रही है। अभी आगे के श्लोकों में बात और आएगी। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितना कि ब्रजभूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। इन दो शब्द लाइनों को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत गंभीर है। हमने चर्चा किया था ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति, ये तीन तत्व होते हैं जो अलग नहीं है। ब्रह्म क्या था? लाइट, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्योति जो उनके शरीर से निकलती है। परमात्मा क्या है? सबके हृदय में भगवान रहते हैं, और ये परमात्मा स्वरूप केवल भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में इसकी आवश्यकता नहीं है। अब भगवान स्वरूप में भी, भगवत स्वरूपों में भी एक कैटेगराइजेशन हो गया। जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह भगवान विष्णु से क्या वात्सल्य भाव रख सकते हैं? क्या माधुर्य भाव रख सकते हैं? लक्ष्मी जी को छोड़ दीजिए, लक्ष्मी जी तो हम है नहीं, न बन सकते हैं। और क्या साख्य भाव रख सकते हैं? नहीं। तो ये प्रात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो सर्वोत्कृष्ट भक्त हैं, अब देखिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो वैकुंठ के भक्त हैं वो शुद्ध भक्त नहीं हैं, लेकिन रस विचार किया जाए, रस की दृष्टि से देखा जाए, तो भगवान कृष्ण ही ऐसे भगवत स्वरूप हैं जो सारे रसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे जाऊंगा ताकि ये बात समझ में आती जाए, हमें तो बड़ा आसान लगता है समझना। आप लोग शायद, आप भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितनी बार तो समझाया मैंने ये, तो 1.2 में भी समझाया था, रसो वैसा, फिर समझिए। भगवान कृष्ण ही रस हैं। अगर भगवान विष्णु की हम आराधना कर रहे हैं, वो भी दिव्य व्यक्ति है, लेकिन क्या भगवान विष्णु से इतनी आत्मीयता हो सकती है कि उनके कंधे पर हाथ रखिए? भगवान विष्णु वहां हैं, मैं उनका दास हूं और हम दास से भाव में सेवा कर सकते हैं, और ये भी बहुत सुख देता है। लेकिन कृष्ण को अधिक सुख तब प्राप्त होता है जब भक्त, जैसे हम चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि माता मरे पुत्र भाव करे ना ताड़न, करे ना पालन। मेरा माता जो है, माता यशोदा, पुत्र भाव में मेरा पालन करती है और ताड़ना, डांटती भी है। तो ये जो डांट है, ये वेदों की स्तुति से भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये जो सुख है भगवान को बेटे का बेटा मांगने का, या भगवान को मित्र मानने का सुख, यह कृष्ण को, कृष्ण भी चाहते हैं, कृष्ण भी सुख के लिए लालायित रहते हैं, तो कृष्ण को ये अधिक सुख देता है। ये आत्मीयता समझ पा रहे हैं? आत्मीयता शब्द जानते हैं? तो ये आत्मीयता है, ये भगवान विष्णु से संबंधित नहीं हो सकता, संभव नहीं। वहां का सिंपल कहा जाए, वहां प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल समझते हैं आप लोग? प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि भाई इस ड्रेस में आना है, ऐसे बर्ताव करना है, ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। लेकिन वृंदावन में कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहां तक कि द्वारका में भी भगवान थोड़ा राजकुमार की तरह रहते हैं, थोड़ा सा उनको, लेकिन महाराज बताते हैं जैसे वृंदावन में तो भगवान कभी बैठते ही नहीं है, केवल नाचते ही रहते हैं, नाचते रहते। अब यहां भी मैं कुछ प्रोटोकॉल का फॉलो करता हूं ना, हम यहां पे कुछ कर रहे हैं, साधु हैं, साधु की तरह प्रोटोकॉल करें। अब हर समय तो हम नाच नहीं सकते ना, लेकिन भगवान कृष्ण कथा गान्यम नाट्यम गमनमपि, वहां कथा जो है वो गान की तरह है और चलना है वह है नाचते हुए चल रहा, इतने आनंद में व्यक्ति वहां पे है गोलोक वृंदावन में। तो एक स्पेशल बात है, जैसे कि वहां पे भगवान विष्णु को कहीं बांधा जा सकता है, वैकुंठ में तो कहीं कोई बांधेगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं दामोदर लीला में माता यशोदा को बांध लेती है। तो ये जो प्रेम है, ये प्रेम ब्रजवासियों का है, ये विशेष है गोलोक वृंदावन में। भगवान की कुछ गुण है, चार गुण गिन लेते हैं। एक तो है उनकी रूप माधुरी, भगवान कृष्ण का रूप लक्ष्मी जी को भी आकर्षित करता है, ठीक है। दूसरा है वेणु माधुरी, उनकी जो मधुर वेणु की ताल तान है वो सभी को आकर्षित करती है। उसके बाद उनके भक्त माधुरी, जो उनके प्रेमी भक्त हैं गोलोक के, वो विशिष्ट हैं। उसके बाद लीला माधुरी, भगवान विशेष लीलाएं करते हैं, मधुर माधुर भाव की लीलाएं करते हैं। मैं समझता हूँ चार ही स्पेशल क्वालिटीज हैं, यस चार स्पेशल क्वालिटी, हाँ चार ही गुण हैं स्पेशल भगवान कृष्ण में, जो अन्य विष्णु रूपों में भी भगवान प्रकाशित नहीं करते। क्या नरसिंह देव कभी बांसुरी बजाते हैं? नरसिंह देव जी सामने आएंगे तो कहेंगे थोड़ा कहीं थप्पड़ ना मार दे ऐसा करके। हमने सुना भी होगा महाराज से अगर लीला में, कि जब वो गुस्से में थे तो वो सब लोग बोले माता जी को, लक्ष्मी जी को, कि आप जाइए थोड़ा सा मूड ठीक करिए, तो कहते नहीं आज इनका मूड ठीक नहीं है, कहीं मुझ पे तमाचा चला दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों से प्रेम नहीं करते, लेकिन वहां पे प्रोटोकॉल आ ही जाता है। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि गोलोकवासी ऐसा नहीं है कि उनके अंदर दास भाव नहीं होता। वो जो दासता का भाव है, कि दास मतलब कृष्ण को सुख देने की भाव है, वह तो धरातल, उसी के ऊपर बाकी सारे रस आधारित रहते हैं। राधा रानी भी यही अपने मानती हैं कि मैं कृष्ण की दासी हूं, यशोदा मैया भी यही मानती हैं कि मैं कृष्ण की दासी हूं, और नंद महाराज का तो वचन ही है एकदम स्पष्ट कि हम कृष्ण के दास हैं। ये भावना हर व्यक्ति की रहती है, और इसी दासत्व के भावना से आदमी को अनंत सुख, मतलब जीव को अनंत सुख प्राप्त हो सकता है। जितना ये भावना होगी कि कृष्ण सुखी हो, उतना यदि हम सुखी हो सकते हैं, ये भी हम यहां कुरमंत शब्द से सीख रहे हैं। जितना हमारे मन में ये आएगा कि मैं सुखी हो जाऊं भक्ति से, तो भक्ति में सुखी नहीं हो सकते। नहीं समझ में आई बात? जितना ये बात आएगी कि कृष्ण सुखी हो जाएं, उतना ही आपको कृष्ण थोपेंगे आपके, आप नहीं भी चाहेंगे तो थोप देंगे। गोपियां कभी नहीं चाहती हैं कि हम अपने सुख के बारे में सोचती भी नहीं है, लेकिन जितना वो कृष्ण को सुख देती है, उसका अनंत गोटी गुना सुख उनके ऊपर थोप दिया जाता है। ये स्थिति है। चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो अब समझ में आ रहा है उच्च अध्यात्मवादियों का अर्थ क्या हुआ, व्रज के जो उपासक हैं उनके बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नई हों, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती हैं, जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य का उदय होता है। एक बड़ी विचारणीय बात है ये, तो आप जानते हो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के दिन में कितने युग होते हैं? 1000। चलिए मैं खाली रिवाइज कर रहा था। और एक युग में कितने साल होते हैं? 43 लाख साल मोटा मोटी। तो अब सोचिए अगर भगवान कृष्ण आगे आ रहे होते, आप कभी अपने भाग्य को देखिए, भगवान कृष्ण आगे आ रहे होते तो उनकी लीलाओं का वर्णन शायद हमको नहीं मिलता, लेकिन भगवान हमसे थोड़ा पीछे आए हैं तो लीलाओं का वर्णन है भागवत में। इसे ये मैं विचार ही कर रहा हूं, क्योंकि आगे जो मनु आएंगे उनका वर्णन, इतना वर्णन नहीं आ रहा है। लीलाओं का वर्णन प्राय तभी होता है जब भगवान की लीलाएं एटलीस्ट इस टाइम फ्रेम में हो चुकी हो, और अभी भागवत की में रखी गई नहीं, टीकाएं भी हैं, सब कुछ है, और वो हमको पढ़ने को भी मिल रहा है, और हमें हमारी मति को भी भगवान कृष्ण में ही लगाया जा रहा है। तो ये सब कुछ एक्सीडेंट से हो रहा है क्या? अब कभी विचार कीजिए कि भगवान विष्णु भी भगवान है, अब भगवान विष्णु के मंदिर में जाएंगे तो प्रणाम ही करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखिए जितनी भी आसक्ति है, मति है, वो जा किधर रही है? कृष्ण में जा रही है। तो आप कहां जाएंगे? कृष्ण के पास जाएंगे। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप हरे कृष्ण, अरे मैं तो वैकुंठ में पहुंच गया, क्योंकि इच्छा ही गोलोक की है। और हमारा अगर हम एक समान शब्द यूज करें, पौवा, पौवा समझते हैं आप लोग, पीने वाला पौवा नहीं, पौवा का मतलब होता है सोर्स, सोर्स। जो हमारे आचार्य हैं प्रभुपाद जी, वह भी गोलोक से ही हैं। देखिए सोर्स का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ये हर जगह चलता है सोर्स। हम लोग का सोर्स इतना प्रबल है प्रभुपाद जी की, उसे हम कल्पना नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी अद्भुत है, श्रद्धा रखिए बात को सुनकर। गुरु कृपा प्रभु जो मंदिर बनाए वृंदावन का, प्रभुपाद जी उनको बोले कि तुम यहां भगवान कृष्ण के लिए मंदिर बना रहे हो और गोलोक में तुम्हारे लिए वो घर बना रहे हैं, मैं देख सकता हूं। अब आप इसको श्रद्धा से स्वीकार कीजिए, और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सोर्स है। प्रभुपाद जी से पूछा कि आपका स्वरूप क्या है, तो बोले मैं बताऊंगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस चीज को अगर हिंदी में कहा जाता है समान शब्दों में, दांत से पकड़ लेना चाहिए कि अनादि काल में पता नहीं हमने क्या कर दिया, जो इतने महान आचार्य का संघ हमको प्राप्त है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। संप्रदाय को ना छोड़िएगा, प्रभुपाद जी के आश्रय को मत छोड़िएगा। प्रभुपाद जी की आप करके देखो जीवन, पिछले जन्म में तो फेल हो गए थे, इस बार ग्रेस मार्क से ही पास हो जाएंगे। प्रभुपाद जी की ग्रेस मार्क से हम पास हो जाएंगे। हम लोग नहीं है योग्य, लेकिन उनकी उनका जो सोर्स है ना, उन्हें जो बोल दिया है, भक्त ने बोल दिया, 16 माला करेगा, 4 नियम का पालन करेगा, इसी जन्म में भगवत धाम चला जाएगा। बहुत बड़ी बात होती है, भगवान के भक्तों की बात भगवान कभी नहीं टालते। नहीं तो आप देख लीजिए, इतना आसान नहीं होता प्रचार करना, वो भी विदेशी लोगों को प्रचार करना। इज एम्पावर्ड आचार्य, बहुत शक्तिशाली है, तो इसलिए इसको विश्वास बनाए रखिए। तो हम खैर बात ये कर रहे थे कि प्रसन्नता से व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है और साधन काल में भी अच्छी रहती है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, आगे हम पढ़े। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग श्लोक है ये, इसमें वो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी, प्राय लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु ये एक ही हैं, लेकिन किस दृष्टि से एक है, किस दृष्टि से भिन्न है, और क्यों भगवान विष्णु की पूजा की जानी चाहिए, यह श्लोक का विषय है। क्या विषय है? किस दृष्टि से ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु एक हैं, और किस दृष्टि से वो अलग हैं, और क्यों भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, वह श्लोक से हम सीखेंगे। क्योंकि आपको याद हो कि इस पूरे चैप्टर का विषय क्या था, 3 विषय थे ना। विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने बोला था कि अभिधेय क्या है और किसकी पूजा करनी चाहिए। तो अब यहां स्थापित है, अभी तो भक्ति के प्रोसेस को समझा दिया गया अभिधेय क्या है, अब बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु भजनीय क्यों है। भजनीय तो समझते हैं, उनकी पूजा क्यों, उनकी ही पूजा क्यों की जानी चाहिए, उसको स्थापित किया जा रहा है। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्ते, युक्तः परः पुरुष एक इहास्य दत्ते। स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः, श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्निर्णांसिः। देखिए, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर गुणास्तैर युक्तः परह पुरुष एक इहा अस्य धत्ते। तो कह रहे हैं जो परह पुरुष हैं, ये वासुदेव भगवान कृष्ण, वो एक हैं, लेकिन वह प्रकृति के 3 गुणों से युक्त होते हैं, सत्व, रज और तमो। प्रतोगुण, रजगुण और तमोगुण, धत्ते का अर्थ है स्वीकार करते हैं। एक होते हुए भी वे 3 रूपों में इन गुणों को स्वीकार करते हैं। स्थित्यादये क्यों करते हैं? स्थिति के लिए, आदि मतलब होता है एक्सेट्रा, हिंदी में क्या कहते हैं एक्सेट्रा को मुझे नहीं पता, इत्यादि, यस, स्थिति इत्यादि। स्थिति का मतलब होता है पालन, और इत्यादि का अर्थ हो गया संहार और सृजन। स्थित्यादि का अर्थ हो गया, प्रभुपाद देखिए अनुवाद में बता रहे, शब्दार्थ में बता रहे हैं, आदि से क्या सूचित हो रहा है, उत्पत्ति के लिए, पालन के लिए और सहार के लिए। भगवान हरि विरेंची हरेति संज्ञः, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, विरेंची मतलब ब्रह्मा जी, और हर मतलब शिव जी की संज्ञा को धारण करते हैं, उनको 3 नाम से कहा जाता है। तो वही भगवान जो है, वसुदेव वह अपने आप को तीन रूपों में विस्तारित करते हैं, शिव जी के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में और हरि भगवान विष्णु के रूप में। लेकिन श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम सिहु, लेकिन सत्व तनोर जो भगवान विष्णु हैं वह पूर्ण रूप से शुद्ध सत्व में हैं, इसलिए जो अपना परम श्रेय चाहता है, चरम लाभ चाहता है, वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु की ही पूजा करे। ये बात बोली जा रही। अब मैं एक बात बोल देता हूं, फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। भगवान कृष्ण या भगवान वासुदेव के ये तीनों गुणा अवतार हैं, तो गुणावतार की दृष्टि से ये एक है। समझ में आया? गुणों को स्वीकार कर रहे हैं तो उस दृष्टि से ये तीनों एक हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि भगवान विष्णु श्रेयांसि तत्र खलु सत्व, जो भगवान विष्णु हैं वह सत्व गुणों को छूते नहीं हैं, स्पर्श नहीं करते, वह हमेशा शुद्ध सत्व में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी स्पर्श करते हैं, शिव जी तमोगुण को स्पर्श करते हैं, ध्यान दीजिएगा शिव जी तमोगुण में नहीं है लेकिन स्पर्श करते हैं, और ब्रह्मा जी रजोगुण में नहीं है लेकिन रजोगुण को स्पर्श करते हैं, तो कुछ हद तक प्रभावित होते हैं। लेकिन भगवान विष्णु पूरी तरह से शुद्ध सत्व में है, उनको वो सत्वगुण को दूर से ही स्वीकार करते हैं। ये बात समझ में आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक किस दृष्टि से है कि तीनों ही गुणावतार है, ये बात समझ में आ रही, गुण स्वीकार करते हैं, और अलग किस प्रकार से है कि भगवान विष्णु शुद्ध सत्व में है, वह प्रकृति का संग कभी भी नहीं करते। ये बात है। इस पर शिला जीव गोस्वामी जी ने कम से कम 3-4 पेज की कमेंट्री लिखी हो, तो उतना तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग श्रीधर स्वामी जी और प्रभुपाद जी और विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी की टीका को थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, ये तो ये बहुत टफ हो रहा है या समझ में आ रहा है? ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है कि एकदम शांति से भक्त लोग बैठ गए तो ऐसा तो नहीं कि एकदम ऊपर से चला गया सब कुछ। ये समझना देखिए बहुत जरूरी है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं सिलेक्शन करना पड़ता है ना। अरे हमको केचुआ खाद बनानी है तो उसमें भी हम सिलेक्शन करते हैं कौन सा केचुआ लें जो सर्वश्रेष्ठ हो, है कि नहीं। हमारे केचुए का नाम भी जय गोपाल है, ठीक है। तो गुण हम देखते हैं ना, ये इसमें ये गुण है, उसमें गुण है। आप बाइक खरीदते हो तो सेलेक्ट करते ना, ये बाइक में ये गुण है, वो बाइक में ये गुण है, तो सर्वश्रेष्ठ, हर जगह हम सर्वश्रेष्ठ तो चुनना चाहते हैं। यस, तो जो भजनीय व्यक्ति है, इसका भजन कर रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और बाकी वस्तुएं सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हो या ना हो उस पर संदेह है। भाई पति सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हुआ कि नहीं, उसमें संदेह हो सकता है। आपको पत्नी पर सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हुई कि नहीं, बच्चे सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हुए कि नहीं, घर सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हुआ कि नहीं, वह तो हमारे कर्मों के अनुसार है। लेकिन भगवान तो प्राप्त, ऐसे तो नहीं भगवान प्राप्त होने वाले हैं, भगवान तो हैं पहले से ही, और वो सर्वश्रेष्ठ रूप से भजनीय है और नित्य रूप से भजनीय है, तो उनका भजन करने वाला भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। इसलिए इसमें कोई कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इससे पहले वाले श्लोक में बोला गया कि भगवान विष्णु की ही उपासना, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि लोग करते आए हैं अभी तक जितने भी कवि लोग थे। अब वो बोल रहे हैं कि इस अर्थ का, इस श्लोक जो पिछला श्लोक आपने हमने पढ़ा उसके अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए इस श्लोक को बोला जा रहा है कि ब्रह्मा जी और शिव जी और भगवान विष्णु ये एकात्मक है। एकात्मक किस दृष्टि से है? गुणावतार के से, गुण से, गुणों से नहीं, गुणावतार होने की दृष्टि से। जैसे एक दृष्टि से आप सभी लोग एक ही हैं यहां पे, ये कैसे, कौन सी दृष्टि से? एक बात होगा इंसान, दूसरा आप लोग यहां भागवत के स्टूडेंट हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे कौन जा रहे हैं? स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बोल देते हैं कि नहीं? बोलते ही हैं आप लोग। लेकिन एक तो हैं, लेकिन क्या उसमें विभिन्नता नहीं है? विभिन्नता नहीं है भाई, कोई माता जी हैं, कोई प्रभु जी हैं, कोई यहां से आए, कोई वहां से आए हैं, कोई समझ रहा है, कोई बोर हो रहा है, ना कुछ भी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये बात समझ लेना चाहिए। तो बहुत बार लोग बोलते एक है, तो मैं सोच रहा था ये बात कहां से आती है एक से, तो भागवत से आ रही है कि एक है, लेकिन एक का अर्थ क्या है? गुणावतार के रूप में प्रकृति का पालन, स्थिति प्रलय पालन करने के लिए गुणों को स्वीकार करना पड़ता है, उस दृष्टि से एक है। लेकिन अंतर क्या है? भगवान विष्णु हमेशा शुद्ध सत्व में है, वसुदेव स्थिति में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बात जो बोलेंगे वो हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। अनुवाद, दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, धत्ते, धत्ते शब्द का अर्थ है स्वीकार करना। तो प्रभुपाद जी एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से क्लियर कर रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसे मैं जल नहीं इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा पीना नहीं मेरे को। तो अगर जल मैं स्वीकार करता हूं तो स्वीकार करने का मतलब मैं संपर्क में आया। अभी मैंने प्रसाद स्वीकार किया, खाना स्वीकार किया, तो मैं संपर्क में आया, है कि नहीं। लेकिन भगवान जब प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं तो क्या प्रकृति के गुणों के संपर्क में आते हैं? नहीं आते। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? तो इस जगत में भी हम देखते हैं कि कोई मैग्नेट है और कोई लोह की वस्तु दूर है, तो वह अगर आप मैग्नेट को, बहुत शक्तिशाली मैग्नेट है, उसे घुमाएंगे तो वो जो लोहा है वह भी प्रभावित होता है। लेकिन क्या मैग्नेट जरा सा भी प्रभावित होता है? क्या मैग्नेट की शक्ति में कुछ ह्रास होता है? ठीक, कोई परिवर्तन आता है मैग्नेट में? नहीं आता। और उस लोहे में भी अन्य लोहों को आकर्षण करने का कुछ गुण आ जाता है। मैं कुछ अगर ठीक से याद आ रहा है तो वह गुण कहां से आ रहा है? मैग्नेट से आ रहा है। अब समझ में आ गया, जबकि मैग्नेट दूर है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की ही शक्ति, भगवान कृष्ण की ही शक्ति से तीनों ही लोग रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और सहार करते हैं। अगर आप लोगों का छोटा सा एग्जाम लूंगा, सृष्टि कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। पालन कौन करते हैं और सहार कौन करते हैं? शिव जी है। लेकिन वो उनके अवतार हैं भगवान कृष्ण वासुदेव की, ये बात समझ में आना चाहिए। क्या इससे हम भगवान विष्णु कृष्ण, भगवान विष्णु या शिव जी या ब्रह्मा जी का अनादर करते हैं? नहीं। ये तो अगर अनादर कर रहे होते तो फिर सूत गोस्वामी जी क्यों बोल रहे होते? ये बात सीधी सीधी बात समझ में हमको आनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज, ये जो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी अनुवाद में कि तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु, तो इसका अर्थ क्या है? क्या भगवान विष्णु सत्वगुण में है? एक मिनट माइक पे बताइए, मैं थोड़ा। वासुदेव स्थिति में है, वह हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु जो है वो सत्वगुण में है, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा भगवान के प्रति। इसको समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं इसको अभी तात्पर्य में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले कभी एक भक्त बीच में बोल दिए थे, ये भी कुछ गलती बोल दिए, कहे कि भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले सात्विक होते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले वो शुद्ध सत्व में रहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले भी शुद्ध सत्व में होते हैं और भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले भी शुद्ध सत्व में होते हैं। इसमें कोई भेद नहीं है, भेद केवल रस की दृष्टि से जाता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भगवान विष्णु की उपासना कर रहा है वह निर्गुण नहीं है, ये गलत होगा कहना। तो ये समझते हुए चलना चाहिए तात्पर्य। पहले जैसे यह कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। ये पिछले श्लोक में बोला था, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं। ये थोड़ा अंश समझ लेना चाहिए। सर्वपूर्ण अंश का अर्थ क्या होता है? भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और उनके बहुत सारे विस्तार हैं, तो जो भगवान के विस्तार भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं उन्हें विष्णु तत्व कहा जाता है, उन्हें स्व अंश कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्व अंश। तो वह भगवान कृष्ण के ही समान शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन देश काल परिस्थिति के अनुसार करते हैं। जैसे कि नरसिंह देव भी भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन वह पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, पूर्ण कृपा का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि भगवान के अंश हैं उतने ही शक्तिशाली, लेकिन एक विशेष प्रयोजन के लिए आए तो उतनी ही मात्रा में वह कृपा रूप जो भी इसका वो प्रदर्शन करते हैं, ये समझना चाहिए। लेकिन शक्तिशाली कितने हैं? भगवान के ही समान है। ये नहीं सोचना चाहिए कि नरसिंह देव जो है वह है कुछ 10% शक्तिशाली हैं या 10% कुछ कम है, यह कभी नहीं सोचना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है, बिल्कुल भी भेद नहीं है, फिर भी लेकिन भगवान श्री राम के कंधे पे कोई चढ़ नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? बहुत अगर हो सकता है तो गौरव साख्य कहा जाता है। गौरव साख्य मतलब विभीषण जी अगर उनको आलिंगन करते हैं, भगवान का भी आलिंगन करते हैं, तो विभीषण को यह जरूर याद रहता है कि मैं भगवान का दास हूं, कहीं मेरा पांव जो है भगवान के पांव के ऊपर न लग जाए। होता है ना, किसी को आलिंगन करेंगे तो हमारा पांव उसके पांव के ऊपर चढ़ सकता है। सुग्रीव को भगवान आलिंगन कर रहे हैं तो उनको भी भय रहता है कि मेरा पांव कहीं भगवान के पांव के ऊपर न चढ़ जाए। और भगवान कृष्ण के भक्त या जो उनके दोस्त हैं वो तो उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं। कुश्ती होती है, अगर कृष्ण की टीम हार जाती है तो कहते हैं तुमको चढ़ाना पड़ेगा। कहते नहीं मैं नहीं चढ़ाऊंगा, मैं राजा का लड़का हूं। तो कहते हैं राजा के लड़के घर पे होंगे, अगर तुम नहीं चलाओगे तो हम तुमको नहीं खेलने देंगे। बताइए, ये बातें सत्य हैं। भगवान के संग ऐसा किया जा रहा है, किया जा रहा है मतलब अभी भी हो रहा होगा। अगर वहां पर शाम हो रही होगी तो खेल के सब हो चुका है, हम यहाँ बैठे बैठे नौकरी कर रहे हैं सब। कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब क्या बोला जाए। वी आर मिसिंग आउट ऑन द फन, इंग्लिश में कहा जाए, वी आर मिसिंग आउट द रियल फन। इस समय अगर मान लीजिए भगवान के धाम में शाम हो रही होगी तो कृष्ण भी वापस आ रहे होंगे, उनको बहुत सुंदर सब लोग वेट कर रहे होंगे कृष्ण का कि क्या कब आएंगे। और ग्वाल और बहुत आनंद की लीला है, और हम यहाँ बैठे बोर हो रहे हैं कि नहीं? बोर नहीं हो रहे आप? मटेरियल वर्ल्ड में बोर नहीं हो रहे? रवि टोचन प्रभु क्या लगता है? है कि नहीं? एक बार आप पहुंच जाएंगे तो आपको तब लगेगा क्या क्या बढ़िया स्थिति है, बहुत अमेजिंग स्थिति है। पहुंच तो जाए, बस किसी तरह से पहुंच जाए, ठीक है। और कुछ लोगों को साथ में भी लेके चले तो और भी अच्छा रहेगा। बजिंदर रू क्या लगता है, वो गुड आइडिया? ठीक, कहाँ थे हम लोग? विष्णु, ठीक है, ये समझ में आ गया। पूर्ण अंश विष्णु तत्व कहलाते हैं। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है। अब प्रभुपाद बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, बलदेव जो है वे सेवक भगवान है और भगवान कृष्ण सेव्य भगवान है। इनका अर्थ समझते हैं, भगवान बलराम जी भी भगवान हैं, विष्णु तत्व हैं। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं कि उनमें और कृष्ण में केवल कलर का भेद है, लेकिन बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रति दास्य भाव से युक्त है। दास का मतलब वही मानते हैं कि भगवान का दास हो, और पांचों रसों में वे भगवान की सेवा कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी की पहले शुरू करते हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। अपने को वृंदावन धाम के रूप में विस्तार करते हैं तो इस तरह शांत रस में वे भगवान की सेवा कर रहे हैं। माता जी ऊपर भी बैठ सकती हैं, उनको आपको दिक्कत तो बैठ जाएगा, ठीक। और वह दास्य भाव में तो सेवा करते ही, भगवान को अपना दास, भगवान का दास मानते हैं। साख्य भाव में बड़े भैया हैं, और वात्सल्य भाव में बड़े भैया के रूप में रहते हैं, और साख्य भाव में तो मित्र हैं ही। और माधुर्य भाव में कैसे सेवा कर सकते हैं, किसी को पता है? बलराम जी माधुर्य भाव में कैसे सेवा करेंगे, वो तो पुरुष रूप में है, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो वह जो श्रीमती राधा रानी की सबसे छोटी सगी बहन है, उनका नाम है अनंग मंजरी, वह बलराम जी की ही विस्तार है, बलराम जी का ही स्वरूप। तो पांचों रसों में बलराम जी ही सेवा करते हैं, इसलिए अगर आपको प्रार्थना करना है तो बलराम जी से प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद जी श्वेताश्वतर उपनिषद के श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं, बलहीने न लभ्य हो, भगवान कृष्ण की प्राप्ति बल के बिना नहीं हो सकती। तो प्रभुपाद कहते हैं ये बॉडी बिल्डिंग वाला बल नहीं चाहिए, इसके लिए हमको बल बलराम जी की आशीर्वाद चाहिए। निताय करुणा होबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, सुना होगा आपने भजन, नित्यानंद बलराम जी की कृपा होगी तो ब्रज में राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। निताय करुणा होबे ब्रज राधा कृष्ण पावे, सुना होगा अपने भजन, सुना होगा। एक और भी ना, हे नो निता बिना भाई राधा कृष्ण पाई ते नाए, बिना निताय की कृपा के राधा कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये बलराम जी की कृपा हमारे सामने गुरु के तत्व, गुरु के रूप में आती है। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था इस बात को, जब गुरु, वी शुड लर्न हाउ टू सर्व कृष्ण प्रॉपरली, हमें सीखना होगा कि हम कृष्ण की सेवा कैसे ठीक से करेंगे। और बड़ा स्पष्ट प्रभुपाद बताते हैं कृपा करके, गुरु की सेवा और कृष्ण की सेवा। गाड़ी दो ट्रैक पे चलती है तो कुछ लोग कहते हैं गुरु क्या जरूरत है, कृष्ण है और मैं हूं बस खत्म, तो वह भी ठीक नहीं है। और कहे गुरु जी हैं कृष्ण की क्या जरूरत है, तो वह भी ठीक नहीं है। गुरु और कृष्ण की सेवा दोनों के द्वारा व्यक्ति भगवान की सेवा ठीक से कर पाता है। जब ठीक से सेवा करता है तो भगवान अपने आप को उस भक्त को प्रकट करते हैं। प्रभुपाद बड़ा सुंदर बोलते हैं, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्ण चरण। तब वह भगवान कृष्ण की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, माया जाल से छूट करके भगवान कृष्ण के चरण की प्राप्ति करता है। तो कहते इसका अर्थ क्या है कि वह गुरु की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है कि स्वयं कृष्ण की सेवा करता है और अन्य भक्तों को भी, अन्य लोगों को भी कृष्ण की सेवा में लगाता है। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत सुंदर है कि हम अन्य लोगों से सुन सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को जो मूड है, जो भाव है, ये जो प्रचार का, दूसरों का कल्याण करने का, ये हमें केवल प्रभुपाद जी की पुस्तकों से प्राप्त हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने अनुभव किया भी होगा, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते हैं तो प्रचार करने की भावना भी बढ़ती है। स्वयं भक्ति करने की भावना तो आती ही है, दूसरों की मदद करने की भावना भी आती है, और उसके बिना हमारा जो भक्ति का जीवन है वह खोखला ही है, अगर हम दूसरों की किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करना चाहते। और आप जानते हो कि अगर हम मदद नहीं करेंगे तो उनकी कोई मदद नहीं हो सकती। ये विचार होना चाहिए। जिन लोगों को आप देखते हो, अगर वो थोड़े से भी भगवान के बारे में सुनने के लिए इच्छुक हैं, तो उनकी मदद आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। जैसे आपका नाम भूल गया प्रभु जी, आपका नाम क्या है? लीलाधर प्रभु। आपको रोज प्रसाद कौन खिला सकता है? माता जी खिलाएंगे, और तो कोई नहीं खिलाने वाला है कि नहीं? होटल में खा सकते हैं, लेकिन प्रसाद तो आपको, कृपा तो माता जी दे सकते हैं, isn't it? और आप कितना कृपा दे रही हैं आपको भी पता नहीं है। ये बात लोग नहीं समझ पाते कि हमको प्रसाद खाने को मिल रहा है तो कितना कृपा है। जैसे हम लोग सोचते हैं, हम लोग कभी इन्वाइट करते हैं भक्त, तो सोचते हैं कि हम साधुओं को सम्मान कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, हमारा भाग्य है। लेकिन हम लोग खुश होते हैं कि हमें आज उन लोग के हाथ से खाना खाने को मिल रहा है जो 16 माला जप तो करते हैं। अब मंदिर में तो जरूरी नहीं है जो कुकिंग कर रहा हो वो 16 माला कर ही रहा हो, कोई 4 कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा, नहीं भी कर रहा होगा, तो ये भी बहुत बड़ा भाग्य कि किसी भक्त के हाथ से जो 16 माला जप कर रही है माता जी, और वह बहाना करके आपको प्रसाद खिलाए, वो तो बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि उनके हाथ का सेवा स्वीकार करते हैं भगवान। बहुत बड़ी बात है। खैर, हम बात कर रहे थे कि थोड़ा डाइवर्ट कर गए। पॉइंट ये है कि भगवान बलराम जी की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा के द्वारा भगवान बलराम की सेवा प्राप्त होती है, और उनकी कृपा से हमको ये इन रसों में हम एंटर कर सकते हैं। ये बात मैं बोलना चाह रहा था। बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण, और नारायण से दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। इसको मैं थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं, इसको अभी नहीं समझा रहे। विष्णु अथवा सत्व गुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुषावतार हैं, और शिरोदकशाय विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ये भी स्पष्ट है, मैं समझता हूं। आप लोग किसी को नहीं समझ में आए तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। कारणोदकशाय विष्णु पूरे सृष्टि का सृजन करते हैं, गर्भोदकशाय विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और वही गर्भोदकशाय विष्णु के बारे में आप जानते हो कि उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और वे अपने आप को शिरोदकशाय विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, जो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। क्या ये सब बातें याद होने लगी हैं? अभी से होता है ना, बादल में बिजली की चमकार होती है, रोशनी थोड़ी देर में होती है, फिर अंधेरा हो जाता है। अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो सब आसान होने लग जाएगा, है कि नहीं? अभी चमकार हो रही है कि ट्यूबलाइट जल रही है? नहीं, खाली चमकार हो रही है। क्या बोला था, कौन से विष्णु? तो एक ही विष्णु बोलते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अभी 3 विष्णु, अब उसके बाद अब 4 और अवतार, उसके बाद कितना याद करने की जरूरत है। लेकिन ये सब बहुत अच्छा है, इसको आप पढ़ेंगे। अभी तीसरे अध्याय में कि इन 3 विष्णु के बारे में भी जानता है व्यक्ति, तो वह मुक्त हो जाता है। हाँ, 4 बनाना पड़ेगा, ठीक है, हम बना के भेजेंगे। ये अच्छा होमवर्क है मेरे लिए। नहीं, अच्छा है, मैं करूंगा उसको। मैं एक सेकंड पहले सोच रहा था इस बात को कि एक फोटो में ऐसे बना करके प्रस्तुत किया जाए। मेरे पास है भी रेडीमेड चार्ट मिलता है, हम दिखाएंगे। अगली बार आपको याद दिलाएंगे तो मैं गोलोक का चार्ट लेके आ जाऊंगा, तो वो देख करके बहुत आसानी से समझ में आ जाता है ना। यहाँ पे इधर लगा सकते हैं, तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो याद रहेगा कहाँ जाना है। मैप देखना बहुत जरूरी होता है कि ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूं कि इस जगत को छोड़िए, इस जगत की आसक्ति को छोड़िए। बोरिंग जगत है ये। कुछ भी आपने कर लिया, आहार कर लिया, निद्रा कर लिया, निद्रा तो करते हैं, भय कर लिया, मैथुन कर लिया, कहां सुख प्राप्त हो रहा है? तो फोकस जब तक नहीं होगा, बहुत सुंदर आयंद्र प्रभु कहा करते थे, इंग्लिश में उनके वक्तव्य है, अनलेस वी हैव आर आईज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हाउ कैन वी हैव आवर फीट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब तक हमारी दृष्टि आध्यात्मिक जगत में नहीं है, हम वहां कैसे पहुंचेंगे? हमारे पैर वहां कैसे पहुंचेंगे? हमारी दृष्टि तो यहीं पे है कि यहां हमको सफल हो जाए। यहां असफलता के अलावा कोई प्राप्ति नहीं हो रही। जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं फिर छोड़ के नेक्स्ट, और एक गद्दा भी साथ में लेके नहीं आ सकते। आज ही मैं महाराज से सुन रहा था, जगत में क्यों भय होता है? क्योंकि यह नहीं पता कि आप जाने वाले कहां पे हो, क्या व्यवस्था होगी। हमारे ब्रजेंद्र प्रभु वृंदावन आने के लिए सोचते हैं, प्रभु जी रहने की व्यवस्था होगी वहां पे, ये होगा क्या, वैसा होगा क्या, ये होगा। तो स्वाभाविक हम सोचते हैं कि भाई यहां जाएंगे तो वहां कहां खाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन अगला जन्म कहां होगा किसी को नहीं पता है। वो तो जो भक्त भक्ति करता है उसका सहज श्रद्धा होती है कि भगवान ध्यान रखेंगे, भगवान भक्ति में हमको आगे मौका देंगे, नहीं तो हम लोग बहुत भयभीत हैं जगत में, कुछ भी पता नहीं आगे क्या होने वाला। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के, ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागाध्यक्ष हैं, ये बात स्पष्ट है। विष्णु के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव जी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकतावादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? इस बात को स्वयं शिव जी कहे हैं कि इतने जन्मों तक कोई ब्रह्मा जी की पूजा करता है फिर वह शिव जी की पूजा करने के योग्य होता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, जब चित्त दूषित है तो श्रद्धा भी वैसे ही होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब चित्त दूषित है तो कितना भी बताया जाए उसको, उसको श्रद्धा नहीं होती कि मुझे भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। तो क्रमशः अन्य देवताओं की पूजा करते 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 जब उसका हृदय बहुत धीरे धीरे शुद्ध होगा तब वह भगवान विष्णु की पूजा करने के योग्य बन पाएगा। इसीलिए जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो बहुत महान व्यक्ति हैं। उनको समझ में आ गया कि हमें कृष्ण की पूजा करना से हमें सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। सबको समझ में नहीं आता और उसमें डिग्रियां काम नहीं करती। और सबसे बड़ा अपराध तो ये है कि कोई कृष्ण को समान व्यक्ति माने। क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं कभी? कभी नहीं मिले। किताबें भी छाप देते हैं इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये है उनको अभी उनके हृदय में पाप है इसलिए वह भगवान को समझ, हृदय में पाप है इसलिए अपने बाप को समझ नहीं पा रहे। यही कहा जाएगा कि भाई बाप साहब खड़े, जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनके घर में चैतन्य महाप्रभु, सोचिए साक्षात परब्रह्म भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हुए उनके घर में है। अगर लीला आपको पता होगी, लीला नहीं बताऊंगा लेकिन लीला को पढ़ने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, सार्वभौम भट्टाचार्य का अध्याय मध्य लीला पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वहां पर बहुत स्टाइल्स बहुत बहुत अच्छे तरीके से उनका उद्धार करते। तो अपने वह क्या नाम है उनका, अब क्या संबंध बोला जाता है, उनके बेट क्या कहते हैं उसको, बहन के पति को क्या कहते हैं, दामाद बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल दामाद, जीजा जी जो भी है, तो वह उनसे बोल रहे हैं, वो भक्त हैं, वो समझा रहे हैं, कह रहे भाई भगवान है। तो कहते क्या प्रमाण है भगवान है, कलयुग में तो भगवान आते नहीं है ऐसा वैसा। तो बोले अगर भगवान की कृपा होगी तो आप समझ जाएंगे। तो कहते क्या प्रमाण है कि आपके ऊपर, आप पर भगवान की कृपा है मेरे पे नहीं है, लॉजिक लगा रहे थे। तो उन्होंने बोला ये प्रमाण है कि भगवान साक्षात आपके घर में है फिर भी आप समझ नहीं पा रहे, ये स्थिति है। तो इतने विद्वान प्रकांड पंडित कि कोई जोड़ नहीं था फिर भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ पा रहे थे, महाप्रभु को नहीं समझ पा रहे, इसलिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे यहाँ पे प्रभु जी आते थे उनको मेरी बात समझ में नहीं आती थी, मैंने कहा जब करते थे, कहते नहीं, तो जब जब करेंगे नहीं, कुछ हृदय शुद्ध होगा ही नहीं तो भागवत कैसे समझ में आएगी, है कि नहीं। मैं माता जी का एग्जाम्पल लेता हूं, हीरा माता जी का, उन्होंने इतना मुझे चमत्कृत कर दिया था कि याद है हमने जब बोला था ब्रह्मा जी ने पांच क्या बातें बोली जो ब्रह्मा के समझ में नहीं आ रहा, एक दो तीन चार पांच बोल दिया। मैंने कहा देखो माता जी बीटेक नहीं है, एमटेक नहीं, कोई पीएचडी नहीं है, लेकिन भक्ति ठीक से कर रही है तो भगवान की बात समझ में आती है। तो जो व्यक्ति हरिनाम जब अच्छे से करता है उसे एकदम समझ में आ जाता है। आज एक भक्त को मैं ऑलमोस्ट डांटने वाला था, मैंने से बोला कि ठीक है आप कुछ मत सेवा करो, आप डोनेशन की सेवा करो, आपको बैठना है, कोई आएगा तो डोनेशन स्वीकार कर लेना, बाकी टाइम में पढ़ते रहना। तो उसने बोला प्रभु जी मुझे, भक्त ने बोला कि पैसे की सेवा, पैसे से लेन देन नहीं करना चाहिए भक्त को। तो मैंने कहा हम इतने समय से क्या पढ़ा रहे हैं भगवद गीता में, कैशियर कितने सारे पैसे गिनता है और उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है। तो हमने कहा कि आप इतना भी नहीं समझ सके अभी, फिर थोड़ा घबरा गए, सोच रहे थे कि अभी तो प्रभु जी कौन से गुण में है, थोड़े मतलब सतो गुण में है, सतो बीच में रजोगुण में आ जाए तो फिर डांट पड़ेगा, ठीक है प्रभु जी को सेवा कर लूंगा। तो मैंने महसूस किया कि फिलोसफी एक चीज है लेकिन उसको अपने जीवन में भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा तभी वो हमको अनुभूति प्राप्त कराएगा। जैसे मैं यहां सीख रहे हैं कि भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए, जैसे मुझे कोई भक्त बोला यहाँ पे कोई माता जी आती नहीं होंगी तो बोलते हैं कि प्रभु जी सब कुछ ठीक बोलते हैं लेकिन एक बात बहुत खराब बोलते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो अब बताइए, शुभ कृष्णदास जी बोल रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं? अब जाके सूत गोस्वामी जी से लड़ाई करिए। सूत गोस्वामी जी तो बोल रहे हैं ना कि भाई शिव जी हैं, ब्रह्मा जी, जो कुछ भी है, सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की ही पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है, तो मेरी क्या क्षमता है, मैं तो कोई अनुभूति व्यक्ति प्राप्त व्यक्ति नहीं हूं। इसलिए शास्त्र को सुन करके शास्त्र के वचन को स्वीकार करना चाहिए। मेरे आपकी कोई मत की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। हम तो अपने को नहीं जानते, हम क्या बताएंगे भगवान के बारे में। लेकिन भगवान के संबंध में जो आचार्यों ने बोला उसको रिपीट करते हैं तो हम शुद्ध होते हैं, भगवान से प्रसन्न होते हैं। तो तांडव नृत्य से नष्ट कर देते हैं। मैं खाली क्रमशः की बात कर रहा था कि जिसका हृदय शुद्ध हो गया है वह भगवान को, उसको समझ में आ जाता है कि हाँ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, अब क्या पहले हृदय शुद्ध करे फिर भगवान की भक्ति करे? नहीं। अगर भक्तों का संग प्राप्त हो गया, भक्ति करता है तो अपने आप हृदय शुद्ध हो जाएगा। जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा उतनी मात्रा में हम भगवान के हैं और भगवान के लिए करना है, उनके लिए ही करना, ये भावना बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आई? माइक दीजिए, माता जी को माइक दीजिए। यस,
प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई और चिरोदक्षाई विष्णु होते हैं। yes. और कारणोदक्षाई विष्णु फिर अलग,
कारणोदक्षाई विष्णु के सारे शरीर से ये जो रोमकूप है उनके, उससे अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं, वे अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में।
ब्रह्मांडों में तो होते नहीं, वो अलग से,
वो उनसे ब्रह्मांड आ रहे हैं। मान लीजिए मैं ऐसे लेटा हूं तो सांस बाहर आ रही है, तो मेरे बाहर ऐसे मान के चलिए, तो सारे ब्रह्मांड उनके बाहर हैं ऐसा मान के चलिए। और वह प्रकृति एक बादल की तरह है, तो बादल को देखते हैं और देखते हैं उस उन्हीं से ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सारा सृष्टि जो है, पहला सर्ग जो है वही करते हैं। वैसे एक अच्छी बात अभी आएगी कि टीकाओं में आएगी कि जब भगवान अपने आप को गर्भोदकशा विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं और उस भौतिक जगत में आते हैं, कहते हैं ये जगह अच्छी नहीं है, फिर वह चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये ब्रह्मांड की सृष्टि केवल उनके एक निमिष मात्र है। उनको कोई आसक्ति नहीं इस जगत से, ये बात है। बहुत अच्छा बात ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं, कुछ सेकंड के लिए आते हैं उनके हिसाब से और फिर समेट लेते हैं। इतना ही। इस पे एक भक्त बहुत अच्छा विनोद में कहते हैं, दीन बंधु प्रभु, कि हमको बहुत प्रचार करना चाहिए। क्यों? अगर हम सोच रहे हैं कि भाई ब्रह्मा जी का दिन बहुत लंबा है तभी प्रलय होगी, लेकिन मान लीजिए जैसे हम लोग कभी कभी सांस लेते ना, आराम आराम से सांस लेने, कभी कभी जल्दी सांस ले लेता व्यक्ति, ऐसे ले लिया तो कहते हैं अगर भगवान विष्णु ने सांस थोड़ा जल्दी ले लिया तो प्रलय हो जाएगी, अब उसके बाद उसको अगली बार ही मौका मिलेगा। इसलिए हमको लोगों को मौका देना चाहिए भक्ति करने का। दीन बंधु प्रभु इस जोक को कहते हैं, ऐसे कभी सांस ले लिया तो क्या होगा। ठीक, तो ये समझ में आया, जो लोग अन्य देवताओं के पास जा रहे हैं उनके पास बुद्धि नहीं है। कृष्ण से भजे से बड़ो चतुर, छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। आज सुबह सुन रहा था अक्रूर मनोरथ में महाराज समझा रहे थे, सनातन गोस्वामी जी की टीका है, तो उसमें वो कह रहे थे कि मैं जब भगवान कृष्ण के पास जाऊंगा और कृष्ण को प्रणाम करूंगा तो कृष्ण अपना वरद हस्त मुझको मेरे पे रखेंगे। तो उस पे भगवान के हस्तकमल के विशेषण दे रहे हैं कि भगवान के हस्तकमल में जिसने कुछ भी दिया तो अनंत गुना भगवान वापस करते। इसीलिए भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम, तो या कुछ तो दो। बोले अरे कहे फूल कहां से लाए, फूल बहुत महंगा है। नहीं, पत्ता कहां मिलेगा, जो पत्ता नहीं तो फूल ले। अरे फूल बहुत महंगा हो गया, फल ले। अरे फल कहां मिल रहा है आजकल, तो जल दे दो। तो उसे वो अगला श्लोक में आता है कि केवल जल देने मात्र से कौशिक नाम के व्यक्ति हुए, उनको भगवान ने इंद्र बना दिया। और बलि महाराज ने भी केवल जल दिया, उनको प्रणाम किया। बलि महाराज तो कहते मैंने केवल आपको प्रणाम नहीं किया, प्रणाम करने की इच्छा करी तो आप वो उनको वह भगवान ने इंद्र बना दिया। नेक्स्ट इंद्र वो बनने वाले। तो भगवान तो देने के लिए उत्सुक हैं, वह इसलिए मांग रहे हैं कुछ तो करे मेरे लिए। बाकी दिया तो सब कुछ उन्हें ही नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तो सभी कुछ उन्हें तो दिया हुआ है। ये भगवान का स्वभाव है कि उन्हें कुछ थोड़ा सा भी देता है तो भगवान उसको अनंत गुना वापस करते। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान को देने के लिए प्रयास करता है। ठीक है, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्व गुण के रूप विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। हाँ, ये भी बताना जरूरी है, हमने आपको बताया भगवान कृष्ण के जो विष्णु तत्व अवतार है उनको स्व अंश कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब जो जीवात्मा है उनको भिन्न अंश कहा जाता है। वो जैसे एक बहुत बड़ी अग्नि है, उसकी एक चिंगारी बाहर आ जाए तो हम लोग एक चिंगारी मात्र हैं, हम लोग अग्नि नहीं हैं। ये बात समझना चाहिए। तो लेकिन जैसे आप जानते हैं कि जैसे समुद्र की एक बूंद में भी उतना ही खारापन होता है, उसमें उतनी ही गुणवत्ता होती है जितना कि समुद्र में, लेकिन कोई बूंद में डूब नहीं सकता। उसी प्रकार से जीव भगवान के ही गुणों के समान है, लेकिन भगवान कभी हो नहीं सकता। हम लोग अणु हैं, भगवान विभु हैं हमेशा के रूप से। यही बात हमें बोली जा रही है। भिन्नाश का मतलब हो गया जीव। इन शब्दों को हमें समझते हुए चलना चाहिए। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। इस बार समझ में आता है, भगवान विष्णु का कृष्ण का स्वरूप तो होता ही है और जीव का भी एक स्वरूप है। वह स्वरूप स्त्री पुरुष के रूप हिसाब से नहीं होता है। जैसी जीव की शाश्वत रूप से सेवा करने की इच्छा होती है, वैसा ही उसका स्वरूप आध्यात्मिक जगत में होता है। आगे बढ़ जाए, समझ में आ गई बात। ये स्वीकार नहीं करना चाहता है कि नहीं समझ में आया। सब लोग चुप रहते हैं, चुप एकदम। जैसे लगता कहते हैं हिंदी में, कहते हैं सांप सूंघ गया, एकदम चुप, कोई बोल नहीं रहा है कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ना क्या बात है। हाँ जी, नहीं वही मतलब ही है। प्रभु जी कह रहे हैं कि जो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है वही हमारा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा ये स्वरूप नहीं है, हमारा शरीर हम पर एक उपाधि है।
सेवा जो हम कर रहे हैं, जिस में
जो थोड़ा समझ लीजिए, अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो हमारी उपाधि साफ होती है। उपाधि साफ होते 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 मिथ्यांकार साफ होते होते जो भगवान से हमारा नैसर्गिक प्राकृतिक स्वाभाविक जो भाव है वह प्रकट होता है, वह अलग नहीं होता कुछ। जैसे बहुत हम थोड़े किसानी भी करने लगे हैं तो किसान को धर्म दे रहे हैं। जो बीज है उसमें आप सूर्य की रोशनी, जैविक खाद, पानी कहां से देते हैं? बाहर से देते हैं। लेकिन जो बीज में पेड़ है वही तो प्रकट होता है, स्पष्ट है। उसी प्रकार से हृदय में जो भगवान के प्रति सुप्त प्रेम है वो बीज के रूप में है। बीज में कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं है कि कोई पेड़ है कि कुछ भी है। अब मैं ये कहूं कि क्या बीज में पेड़ है तो आप स्वीकार करेंगे? आप कह रहे हैं भी और नहीं भी। बीज में पेड़ है लेकिन अभी प्रकट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम सभी में प्रेम करने की शक्ति तो है ही, और भगवान के प्रति प्रेम भी है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नॉय श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरी बेउदय। तो जो भगवान के प्रति प्रेम है, जो भाव है, वह नित्य सिद्ध है। उसको प्राप्त नहीं करना है, वो प्राप्य नहीं है, वह केवल प्रकट करना है शुद्ध श्रवण कीर्तन के माध्यम से। तो जब हम जब करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो धीरे धीरे भगवान ही स्वयं इस भाव को प्रकट करते हैं। हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं कि मैं सखी भाव में हूं। कभी कभी वृंदावन में आप ऐसे स्थान में जाएंगे जहां पुरुष लोग नथने पहन लेते हैं, अपने को लड़की के रूप में डिजाइन ड्रेस कर लेते हैं। यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। दंडकारण्य के ऋषि बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले थे, लेकिन भगवान राम के प्रति उनका माधुर्य भाव था। तो भगवान ने कहा, इस समय तो हम स्वाभाविक सी बात है आपका मैं इच्छा का प्रतिदान नहीं कर सकता, लेकिन जब वो कृष्ण रूप में आए तो उन्हें ऋषिचारी गोपी कहा जाता है। वे ऋषिचारी गोपियां भगवान कृष्ण की उस प्रकार से माधुर्य भाव में सेवा कर पाए। ऋषिचारी मतलब जो पहले ऋषि थे, अब वह गोपी के रूप में। तो ये जो गोप भाव है, गोपी भाव है, ये बाह्य शरीर से निर्भर नहीं करता। कोई स्त्री हो सकती है, स्त्री शरीर में हो सकता है, भक्ति करते करते उसके हृदय में साख्य भाव हो सकता है। कोई पुरुष शरीर में हो सकता है लेकिन उसका माधुर्य भाव हो सकता है। यह भावना भौतिक शरीर के ऊपर आधारित नहीं रहती है, लेकिन इसको भौतिक शरीर में प्रकट नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि अब कोई, मान लीजिए कोई स्त्री है और साख्य भाव में आए तो वो पैंट शर्ट पहन ले, या फिर पुरुष जो है वह स्त्री के कपड़े पहन ले, और ऐसा होते हुए देखा जाता है। एक छोटी सी घटना मैं बता देना चाहता हूं संबंध में। प्रभुपाद जी के समय में भी एक भक्त मंगल आरती आना बंद कर दिया। मैंने सुनाया था पहले भी, भक्ति करना बंद कर दिया, जप करना बंद कर दिया। क्या कर रहे हैं? रूम बंद करके बहुत दिन भक्तों ने देखा है, उस जो होल होता है डोर का होल, क्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे कूद रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? कि तो उसने बाद में मालूम चला कि वो मुझे किसी बाबा जी ने बोला है कि तुम अध्यात्म जगत में वो हो पीकॉक हो, तो मैं पीकॉक बनने का प्रयास कर। तो ये कोई साधना नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे अपने आप ही भाव उत्पन्न हो जाएगा। देखिए आप देखना, जब सच्चे भक्ति की बात आती है तो वह प्राइस पे नहीं करना चाहते, कोई मूल्य नहीं देना चाहते, चीप चीजें चाहते हैं हम लोग। जैसे आप उदाहरण समझ सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और सच्चे सोने में बहुत अंतर होता है। हमने तो कभी खरीदा नहीं, लेकिन सिद्धांत समझ रहे हैं, देखने में आर्टिफिशियल ज्वेलरी लग सक वो सोने जैसे लग सकती है, इसमें कोई दम नहीं है। एक प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि मात्र कोई स्त्री को बच्चा नहीं है, लेकिन वो उसने कुछ ऐसे ऐसे करके पेट में बांध लिया, तो उसका मतलब ये उसको देखिए दुनिया सोचेगी कि हाँ भाई ये तो गर्भवती हो गई, लेकिन वो उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है। उसी प्रकार से जो इस प्रकार का भक्ति का ढोंग करते हैं, वो हृदय में भक्ति होती नहीं, लेकिन दुनिया को दिखा देंगे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो भक्ति दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को देखने के लिए, भगवान को दिखाने, भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए होती है। तो बात बोल रहे थे मूल रूप से आध्यात्मिक रूप है। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है, माया के प्रभाव में भगवान कभी नहीं आते। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। क्लियर है? ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं, और इस तरह वे प्रकृति के तीन गुणों में फंस जाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं, वो धत्ते शब्द को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जब प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं तो वो इसमें लिप्त नहीं होते, उन्हें कोई इसमें आकर्षण नहीं है। भगवान क्यों आते हैं? बद्ध आत्मा का उद्धार करने के लिए। और बद्ध आत्मा जब आती है तो क्यों फंस जाती है? वह इसमें लिप्त हो जाती है, हम अपनी पहचान शरीर से करने लग जाते हैं। भगवान जब आते हैं तो अपने स्वरूप में आते हैं। ये बात हम लोग भक्ति उसमें भक्ति वृक्ष में भी समझाए थे, ठीक है? जब देखिए भाई नहीं समझ में आया तो यहाँ कोई डांटा नहीं जाएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हैं मैं नहीं समझ में आया। कभी कभी भाषा भी समझ में नहीं आती है। एक बार अभी हम कॉलेज में थे तो वहां प्रचार किए, तो इंद्रतित्ती नहीं करना चाहिए, तो एक लड़के को समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। तो बाद में किसी से पूछा था ये इंद्रतित्ती क्या होता है, तो कुछ शब्द अगर आते हैं तो पूछ लेना चाहिए कि भाई क्या मतलब है इसका। हृदय में, हम सभी के हृदय में जगत को भोगने की इच्छा है, इस कारण से हम गुणों में फंस जाते हैं। फलस्वरूप ओके विजेंद्र प्रभु माइक लीजिए, इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। जब युद्ध हो रहा था और आपको युद्ध में जो भी आपका जो ऑपरेशन था उसे भेजा गया था, तो आप क्या सोच रहे थे, गोली चलानी है कि नहीं चलानी है?
हरे कृष्ण प्रभु जी,
हाँ
गोली चलानी,
गोली चलानी, ठीक। तो आप सोच रहे थे कि कितनी गोली चलाऊंगा, गोली कितने रुपए की आती है,
ऐसा कुछ नहीं?
क्या सोच रहे थे?
मतलब ये दुश्मन को मारना है,
दुश्मन को मारना है और आज्ञा दी गई है गोली चलानी। तो अब यहां पे घर में यहां पे किसी से लड़ाई हो जाएगी तो गोली चलाएंगे
घर में?
हाँ नहीं, नहीं चलाएंगे। बस माइक रख दीजिए। तो आपके सामने, अच्छा एक और बात, प्रभु जी को पेंशन 50,000 रुपीज मिलती है, सामान्यतः एक सैनिक को नहीं मिलती, नहीं मिलती है ना। आपको स्पेशल क्यों मिली? क्योंकि आपको गोली लगी। तो जगत में बहुत से लोगों को गोली लगती है तो उन्हें कोई पुरस्कार मिलता है? आपको क्यों मिला? क्योंकि सरकार की सेवा में आपने किया। अब समझ में आ गई बात? प्रत्यक्ष उदाहरण है, पिछली बार मुझे मिले थे तो मैं, मुझे याद आ गया कि मैं बताना चाहता हूं। उसी प्रकार से इस जगत में व्यक्ति अगर भगवान के लिए कार्य करता है तो गुणों से लिप्त नहीं होता। यही उस भक्त को आज समझ में नहीं आ रहा था। वह धन जो है वह गायों की सेवा के लिए, वो गाय कृष्ण की सेवा के लिए, ये देखना चाहिए, तब युक्त वैराग्य होता है। देखिए कि आप ऐसा नहीं कि जगत में रह रहे हैं तो आपको कुछ करना नहीं होगा, लेकिन क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसके उस पर आधारित होता है कि हम गुणों में लिप्त होते हैं या नहीं होते, और नहीं तो गुणों में तो कार्य करना ही पड़ेगा। ओके फलस्वरूप जीवों की विविध अवंध, प्रभु मेरे उसमें छह बजे का अलार्म लगा होगा, उसको कैंसिल कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग में डिस्टर्ब करेगा। फलस्वरूप जीवों की विविध अवधि का बंदी जीवन बताने के लिए अपने, फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? क्योंकि विभिन्न भौतिक इच्छाएं हैं, इस कारण से हम अलग अलग सेल, सेल मतलब ये जो हमारा शरीर है ये कारागृह का एक घर है, तो अलग अलग इच्छाएं, जैसे कि पुरुष होता तो अच्छा होता, तो चलो भाई पुरुष के शरीर प्राप्त हो गया, स्त्री होता तो अच्छा होता, ठीक है भाई, कुत्ता होता तो अच्छा होता था। इस प्रकार से विभिन्न इच्छाएं लोग करते हैं और उनको विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त हो जाते हैं, ये बहुत बोल रहे हैं। भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है, देवता हो जाता तो अच्छा होता, बस देवता बन जाओ, और अगर भगवान का दास होता तो बस वही भगवान के धाम चले जाएंगे, ठीक है। इस भौतिक जगत का बंदी ग्रह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है और एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का दिन की समाप्ति, उस वक्त शिव जी नष्ट करते हैं। ब्रह्मा जी की जब परम आयु होती है तो गर्भोदकश विष्णु पूरा सब कुछ कारणोदकश विष्णु में विलीन हो जाता है। एक कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद शिव जी नष्ट करते हैं, ठीक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, घबराई मत, इस श्लोक के बाद हम रुक जाएंगे, उसके बाद आप लोग एक हफ्ते तक थोड़ा सा मनन कीजिएगा कि क्या बोला गया था, ठीक है। किंतु जहां तक इस बंदी ग्रह की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज सत्ता द्वारा बंदी ग्रह की देखभाल की जाती है। ये क्यों बोल रहे हैं, देखिए जो पालन का कार्य है बंदी ग्रह का, वह सरकार की आज्ञा पर ही होता है, लेकिन सरकार का केवल यही कार्य नहीं है कि बंदी ग्रह को मैनेज करे, लेकिन उनकी आज्ञा के बिना बंदी ग्रह का मैनेजमेंट होता भी नहीं है। तो भगवान विष्णु से धारण किए हैं, और दूसरी बात, पालन करना बहुत मुश्किल होता है, सृष्टि करना, संहार करना बड़ा मुश्किल होता है, सॉरी आसान होता है, लेकिन पालन करना मुश्किल होता है। पालन के लिए सत्वगुण बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं भक्तों के चरणों में निवेदन करता रहता हूं कि सुबह जप कर लीजिए, नहीं तो व्रत का पालन करना बहुत कठिन हो जाएगा। सोलह माला ऐसे बहुत कितना आसान लगता है ना, सोलह माला करना सुबह, लेकिन दिन में लगता है, मैं कभी कभी सपना देखता हूं कि मैं, मेरी माला छूट गई है, मैं दिन में माला जप कर रहा हूं, लोग मुझे एक के बाद आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर मैं सुबह उसमें उठ जाता हूं, अरे वो तो सपना मात्र था। तो यह तो सपना ही रहे तो अच्छा रहेगा, वास्तविकता में तो सुबह ही माला हो जाना चाहिए, ये बहुत ये ध्यान रखना चाहिए कि सत्वगुण के बिना हम कुछ पालन नहीं कर पाएंगे, पालन मतलब मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कहां गए, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति किसी भी चेतना में भक्ति में आ सकता है, लेकिन टिकेगा तभी जब सत्वगुण होगा। कितने लोग आप आते हुए देखे होंगे, ना जाते हुए भी देखे होंगे, क्यों जा रहे हैं आ रहे हैं, सब कुछ तो क्लियर है, प्रभुपाद जी ग्रंथ से सब कुछ क्लियर है, सत्वगुण का अनुशीलन नहीं करता इस कारण से। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी ग्रह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। प्रभुपाद अब यहां बता रहे हैं, श्रेयांश तत्र खलु सत्व त्रिणाम नृणाम स्यु, परम श्रेय की प्राप्ति इस जगत से मुक्त हो जाए इसके लिए भगवान विष्णु की ही भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी ग्रह जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। ये लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को, मुक्त होना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो भगवान की सी पूजा कीजिए, और इस जगत में ही सड़ना चाहते हैं तो देवताओं की पूजा करिए। भाई अब ये तो पूछा जाएगा कि इस समय जेब में किसके कितने पैसे हैं, तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जितने भी पैसे हों ठंड सबको बराबर लग रही है कि नहीं। मैं समझता हूं सबसे धनाढ्य हमारे राम स्वरूप प्रभु हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वृद्धावस्था नहीं आई है कि नहीं। कभी कभी डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन डोनेशन नहीं देते। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा इल्यूजन है कि हम और ऐसा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, हम और पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो हम हमारे सारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी, या किंचित मात्र भी दुख की निवृत्ति हो जाएगी। जिस जितना कर्म हमको भोगना है वो भोगना ही पड़ेगा। मेरे को खुजली का बहुत प्रॉब्लम है, 12 साल से प्रॉब्लम है नहीं था, और एक ही दिन में ठीक हो गया, और मैं कितनी चीज ट्राई कर चुका हूं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, मेरे इतने जीवन में देखा कितने सारे रोग आते हैं जितने समय तक हमें भोगना हो, वृंदावन में ही दवा प्राप्त है, रोज उसके सामने से भी जा रहे हैं, लेकिन अब एक्सेस नहीं है उसके सामने, पता कितनी बार हमने ऐसे देखा है कि जितने समय तक हमें भोगना है उतने समय तक हमको भोगना ही पड़ता है। धन इसमें कुछ नहीं कर सकता। कोई भी आप लोगों के जीवन में अनुभव किया होगा, बहुत सारी बीमारियां हैं, वह आपको जितने समय भोगना है उतने समय भोगना ही रहता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए, जिनके धाम में जाकर के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रहलादानंद महाराज बोल रहे थे, हम लोग प्रॉब्लम के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक प्रॉब्लम होती है कि नहीं। कोई दिन शांति से पर्सनली व्यक्तिगत मेरी तो आदत बन गई, कोई नया प्रोजेक्ट ना हो, कुछ इसमें हमें कुछ दिमाग ना लगाना पड़े तो अजीब से लगता है, कुछ है नहीं सेवा, कुछ करने के लिए नहीं, ये दिक्कत हो गई। ये स्थिति है। कभी सोचा है ऐसा स्थान जहां पे मतलब आप सब खाली सोचे और खाना मिल जाए? ये तो भगवान के धाम जाने की भी जरूरत नहीं है, तो स्वर्ग में भी ऐसा है, खाना पकाने की टेंशन नहीं। आज ही महाराज बता रहे थे नहाने धोने बाथरूम जाने खाना बनाने में कितना समय निकल जाता। तो वो कहते अरे हम 12 साल से भजन कर रहे हैं। तो क्या 12 साल भजन किए हो? 2 घंटा जब करते रहो, सुना 12 साल भजन कर रहे हैं। स्वर्ग में तो ऐसा कोई समस्या भी नहीं है, फिर भी उनको गर्हित मानते हैं जो ऊपर के लोग हैं। वो स्वर्ग में देखते क्या ही भोगों में लगे हुए हैं, निकृष्ट भोग में, तो कितना सुख है वैकुंठ में और कितना सुख गोलोक में है उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। वस्तुतः गोलोक के एक कॉर्नर में है वैकुंठ, सारे वैकुंठ गोलोक के एक कॉर्नर में है, इतना बड़ा गोलोक है। कभी कभी हमारा माइंड फ्यूज हो जाता है कि इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतना क्या है, क्या है गोलोक, हम समझ नहीं पा रहे। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रुकेंगे। कोई प्रश्न है किसी का तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न है? प्रश्न तो नहीं होगा। इसको समझाया जाएगा किस प्रकार से भगवान विष्णु श्रेष्ठ है अगले श्लोकों में। उसको स्टॉप कर दीजिएगा।
हरे कृष्ण।
हाँ,
ये शिव जी और ब्रह्मा जी और इंद्र वरुण जैसे ये सभी देवता है, बाकी भगवान विष्णु?
भगवान विष्णु देवता नहीं है, भगवान विष्णु साक्षात भगवान, यही तो हम श्लोक में सीख रहे हैं ना, भगवान विष्णु साक्षात भगवान।
भगवान कृष्ण भी?
हाँ, भगवान है। भगवान कृष्ण के ही सारे विस्तार विभिन्न विष्णु स्वरूप है। क्या नाम है आपका?
मयंक।
ओके, अब पहली बार यहाँ प्रवचन में है तो धीरे धीरे आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे इस बात को। और कोई प्रश्न है? माइक बताइएगा, माइक दीजिए।
आपने बताया ना प्रदीप, यदि हम भगवान की सेवा में लगते हैं, कार्य करते हैं भगवान की सेवा के लिए, चाहे कोई भी करें, तो गुणों में लिप्त नहीं होते हम।
यस,
ये बता रहे थे ना?
और भगवान की सेवा के लिए कोई कर्म कर रहे हैं तो भी लिप्त नहीं होते। भाई खाना कोई बना रहा है और कोई सब्जी काट रहा है तो क्या वो खाना बनाने का अंग नहीं है? समझ रहे ना मेरी बात? मान लीजिए कोई माता जी खाना बना रही है और कोई उनको असिस्ट कर रहा है तो मान लीजिए, अरे ऐसे मत समझिए, अच्छे उदाहरण देता हूं, मैं बम फोड़ने आऊं और आप मेरी मदद करें तो आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी? अरे हमने तो बम नहीं फोड़ा। अरे कैसे नहीं फोड़ा? तुमने सब अपने रुकवाया अपने घर में, बुरा मत मानेगा, क्यों आप लोग किए हैं ना, खाली उग्रवादी को मारते थे कि बगल वाले को भी मार देते थे इसको? जो उग्रवादी को माइक में बता सकते हैं, आर्मी वाले करते ही हैं, उग्रवादी जिसके जिसके घर में उग्रवादी होता है उसको भी गोली मरती पड़ती है।
अरे कृष्ण प्रभु जी,
हाँ,
बगल वाला भी मर जाता है।
ये मर जाता है, उसको मारते ही हैं। अरे भाई उग्रवादी को रखे हो तो उसको बगल वाले को मारोगे ही, मारना ही पड़ेगा। क्यों रखे उग्रवादी को? जब पता है तो उग्रवादी है तो क्यों रखा हुआ? उसी प्रकार से भक्तों का संग क्यों किया आपने? आप भी मुक्त हो जाएंगे। ये महाराज बता रहे थे भगवान का स्वभाव है, कोई घर में भक्ति कर दे, कोई लड़की भक्ति कर रही है या लड़का भक्ति कर रहा है, पति कर रहा है, पत्नी कर रही है, उसका उसके संबंध में, उसको संबंध देख करके भगवान सबका उद्धार करते हैं। तो इसलिए जो कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है वह अपने परिवार के लिए सर्व सबसे अधिक परिवार भी छोटा बोल दिया मैंने, पूरे पूर्वजों का आगे पीछे सबका लाइन से उद्धार कर दे, सबका लाइन से उद्धार कर देना, ये विश्वास होना चाहिए। ये सब वर्णन है, पूरा भागवत में भी जगह जगह इसकी पुष्टि है। इसलिए कन्वीनियंस होना चाहिए कि हम भक्ति करके सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ कल्याण कर रहे हैं, अपना भी और अपने आगे पीछे सभी का। ठीक है, कोई डाउट? तो मैं खाली बोल रहा था कि कुछ कार्य करते हो तो उसके साथ में जो है जो कुछ ये सीधी सीधी बात है, मैं वो स्पष्ट समझाता हूं, परिवार क्यों करना चाहिए, परिवार का पालन क्यों करे व्यक्ति, ताकि वह भक्ति कर सके। ठीक है, प्राय लोग इसीलिए सोचते हैं परिवार क्यों करते हैं कि बच्चा बढ़ जाएगा, इंजीनियरिंग कर लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सब भौतिक लक्ष्य हैं। और अगर कोई व्यक्ति सोचे कि भक्त है, जो पत्नी है, बच्चे हैं, जो कुछ भी है, उनको भक्ति करने का मौका मिले, तो जो नौकरी करता है तो वह भी भक्ति का अंग हो जाता है। भक्ति बड़ी स्पेशल चीज है, भले ही वह भक्ति नहीं है, नौकरी करना भक्ति नहीं है, लेकिन उसका, क्योंकि वह उद्देश्य भक्ति है, उस भक्ति के पीछे है, तो इसलिए वह भी भक्ति हो जाता है। कई बार मैंने समझाया है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये तभी होगा जब सुबह शाम हम भक्ति करेंगे। अगर सुबह शाम श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं, भक्ति हमारा मुख्य गोल नहीं है, तो फिर इस चेतना में रहना मुश्किल होता है। ठीक है।